ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम केंद्र 3 चैप्टर 24 टेक्स्ट 41 मैत्र उवाच एवं समुदिता सेना कपिलेना प्रजापति राक्षिणी कृत्वा तं प्रीतो वानं एव जगाम एवं समुदितस्तेना कपिलेना प्रजापति
कपिलेना प्रजापति
दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो
दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो
वनमेव जगामः
वनमेव जगामः
एवं समुदितस्तेन
एवं समुदितस्तेन
कपिलेना प्रजापति
कपिलेना प्रजापति
दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो
दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो
वनमेव जगामः
वनमेव जगामः
एवं समुदितस्तेन
एवं समुदितस्तेन
कपिलेन प्रजापति
कपिलेन प्रजापतिः
दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो
दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो
वनमेव जगामः
वनमेव जगामः। मैत्रेय उवाच एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः। मैत्रेय मुनि ने कहा एवं इस प्रकार समुदित संबोधित होकर तेना उस कपिलेना कपिल द्वारा प्रजापति ही मानव समाज का जनक दक्षिणीकृत्य परिक्रमा करके तम उसको प्रीतः शांतिपूर्वक वनम जंगल को एव निसंदेह जगाम प्रस्थान किया। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार है। अनुवाद श्री मैत्रेय ने कहा इस प्रकार अपने पुत्र कपिल द्वारा संबोधित किए जाने पर मानव समाज के जनक श्री कर्दम मुनि ने उसकी परिक्रमा की और अच्छे तथा शांत मन से उन्होंने तत्काल जंगल के लिए प्रस्थान कर दिया। तात्पर्य, जंगल जाना प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य था। यह कोई मानसिक सैर या यात्रा नहीं जिसे कोई एक करे और दूसरा ना करे। प्रत्येक मनुष्य को कम से कम वानप्रस्थ के रूप में जंगल में जाना चाहिए। जंगल जाने का अर्थ होता है सब प्रतिशत भगवान की शरण में जाना, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को बातों बातों में समझाया था, सदा समुद्र विघ्न ध्याम। मनुष्य क्षणिक भौतिक देह धारण करने के कारण चिंताओं से युक्त रहता है, अतः उसे चाहिए कि वह शरीर के प्रति अधिक मोह न करे। उसे चाहिए कि वह मुक्त हो। मुक्त होने की प्रारंभिक प्रक्रिया जंगल जाना है, अर्थात पारिवारिक संबंधों का परित्याग करके कृष्ण भक्ति में तत्पर होना है। जंगल जाने का यही प्रयोजन है, अन्यथा जंगल बंदरों तथा पशुओं का स्थान होता है। जंगल जाने का यह अर्थ कदापि नहीं कि बंदर या हिंस पशु बना जाए। इसका अभिप्राय यह हुआ कि श्री भगवान की एकमात्र शरण ग्रहण की जाए और पूरी तरह सेवा में लगा जाए। वास्तव में मनुष्य को जंगल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। संप्रति जिस मनुष्य ने अपना सारा जीवन नगरों में व्यतीत किया है, उसके लिए यह उचित नहीं है। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, हित्यात्म पातंग गृहम अंधकूपम। मनुष्य को सदैव पारिवारिक झंझटों में नहीं लगे रहना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भक्ति के बिना गृहस्थ जीवन अंधकूप के समान है। यदि कोई खेत में स्थित अंधे कुएं में गिर पड़े तो वह वहां वर्षों चिल्लाता रह सकता है, किंतु न देख पाने के कारण कोई उससे बचाने नहीं जाएगा, न ही कोई समझ पाएगा कि यह चीख कहां से आ रही है। इसी दशा में मृत्यु सुनिश्चित है। इसी प्रकार जो लोग भगवान से अपने नित्य संबंध को भूल जाते हैं, वे गृहस्थ जीवन के अंधकूप में पड़े रहते हैं। उनकी स्थिति अत्यंत अनिष्टकारी है। प्रहलाद महाराज ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि किसी प्रकार इसी कूप का परित्याग करें और कृष्ण भक्ति में लगे और इस तरह ये भव बंधन से मुक्त हो जाए।
ओम ज्ञानंजना शलक्या चक्षुर्मिलितानेन तस्मै श्री गवे श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितामेन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वयं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आप पिछले कई अध्यायों से कर्दम मुनि और देवहूति की कथा सुनते आ रहे हो, और इस अध्याय में आपने ये भी पढ़ा कि कर्दम मुनि को ज्ञान था कि उनकी पत्नी देवहूति के गर्भ में परम भगवान स्वयं प्रकट होने वाले हैं। भगवान प्रकट हुए थे कपिला देव भगवान के रूप में। प्रभुपाद जी इस अध्याय के अनेक तात्पर्यों में समझाते हैं कि दो कपिला हुए हैं इतिहास में, एक थे ढोंगी कपिला और एक थे असली कपिला। और यहाँ जो शिक्षा दी जा रही है, दी जाएगी अगले अध्याय से, वो शिक्षा है असली कपिला देव भगवान के द्वारा, क्योंकि परम भगवान के अवतार हैं। भगवान के प्रसिद्ध अवतारों का ज्ञान हमें शास्त्र में प्राप्त होता है। अवतार का अर्थ है जो कि प्रकट होता है भगवान के दिव्य धाम से। आज के वातावरण में ये अवतार शब्द एक अंतर्राष्ट्रीय शब्द बन गया है। पहले तो ये संस्कृत शब्द था पर आज अंतर्राष्ट्रीय बन गया है। क्यों? क्योंकि हॉलीवुड के एक प्रोड्यूसर ने $250 मिलियन खर्च कर एक सिनेमा फिल्म बनाई थी तीन साल पहले जिसका नाम था अवतार। तो आज आप इटली में भी जाओ, फ्रांस में भी जाओ, अवतार शब्द का उपयोग करोगे तो लोग कहेंगे हाँ आई हर्ड अबाउट दिस, मैंने सुना हुआ है। तो अवतार का अर्थ है जो कि प्रकट होता भगवान के धाम से, और भगवान अपने भक्तों को ही माता पिता भाई बहन के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे भगवान जब वासुदेव देवकी के खानदान में प्रकट हुए थे, वासुदेव देवकी ने 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए बड़ी गहरी तपस्या उठाई थी। उनका एक ही चिंतन था कि हमें परम भगवान प्राप्त हो पुत्र के रूप में। तो कंदाना मुनि योगी तपस्या की थी, फिर उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और गृहस्थ आश्रम में रहे, जहाँ की उनकी पत्नी ने 9 बेटियों का को जन्म दिया, और फिर भगवान कपिला देव को भी प्रकट हुए उनके गर्भ से। तो कृष्णा मुनि ने अपना कार्य गृहस्थ के रूप में पाला है, और अब कृष्णा मुनि की इच्छा है कि मैं, उनकी इच्छा पहले से थी कि मैं पुत्र जन्म लेने के बाद मैं और गहराई के साथ यात्रा करूं और भगवान का चिंतन करूं। दूसरे शब्दों में, जैसे आप जानते हो, समाज का विभाजन 4 वर्ण और 4 आश्रम में होना चाहिए, और इस अध्याय के अनेक तात्पर्यों में प्रभुपाद जी इस विषय पर बल दे रहे हैं कि हमें गृहस्थ आश्रम में अंत तक नहीं रहना चाहिए। और यहाँ कृष्णा मुनि का उदाहरण दिया जा रहा है कि वो गृहस्थ आश्रम में थे, 9 बेटियों को जन्म दिया उनकी पत्नी ने, उनका उन्होंने विवाह करवा दिया ऋषियों के साथ, और इसके पश्चात उनके जब पुत्र प्रकट हुए उसके पश्चात उन्होंने बेटे की इजाजत लेकर घर को छोड़ा, जंगल में प्रवेश किया 24 घंटे भगवान के चिंतन करने में। तो समाज का विभाजन होना चाहिए 4 वर्ण और 4 आश्रमों में तो ही समाज सफल माना जाता है। ब्रह्मचारी, गृहस्था, वानप्रस्था, सन्यास। ब्रह्मचारी आश्रम में ब्रह्मचारी सारा जीवन बिताते हैं और शास्त्रों की शिक्षा का पालन करते हैं, खास करके उन कार्यों से बचते हैं जिनके द्वारा ब्रह्मचारी जीवन नष्ट हो जाए, बिगड़ जाए, कमजोर हो जाए। और फिर अगर व्यक्ति चाहे तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है, और आवश्यक नहीं, कई बार पूछते हैं क्या आवश्यक है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना, ब्रह्मचारियों के लिए आवश्यक नहीं। पर कई लोग संस्था के साथ जुड़ते हैं जो पहले से ही गृहस्थ आश्रम में हैं, और गृहस्थ आश्रम दो प्रकार की स्थितियां होती हैं विवाहित स्थिति में, गृहमेदी और गृहस्थ। गृहमेदी उसे कहते हैं जो कि पति पत्नी रहते हैं एक साथ, पर उनका भाव यह है इंद्रिय तृप्ति। गृहस्थ उसे कहते हैं जिनका भाव है भगवत प्राप्ति, जिसमें पति पत्नी संतान सब जुड़ते हैं भगवान की सेवा में। और गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, जिसमें घर से वो थोड़ा मुक्त होता है, यात्रा करता है तीर्थ के स्थानों की, और इसके पश्चात व्यक्ति संन्यास आश्रम में भी प्रवेश कर सकता है। और संन्यास आश्रम में भी 4 स्टेज है, कुलीचक, भौदक, परिव्रजकाचार्य और परमहंस। तो यह उदाहरण दिया जा रहा है कर्दमा मुनि का। जहां तक स्त्रियों का प्रश्न है, पिछले श्लोक के तात्पर्य में प्रभा जी ने समझाया है कि स्त्रियों को कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। पहली स्थिति में उनकी देखभाल की जाती है माता पिता के द्वारा, फिर देखभाल की जाती है पति के द्वारा, जिसके पश्चात देखभाल की जाती है पुत्र के द्वारा। तो इस प्रकार स्त्रियों को पूरी छूट नहीं दी जाती। आज के वातावरण में सबको छूट चाहिए, पर शास्त्रों के, वैदिक शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों की हमेशा सुरक्षा होनी चाहिए। तो कदामा मुनि ने शास्त्रों के आधार पर जीवन को बिताया है, और हालांकि उन्हें पता था कि जो पुत्र उनके जन्म उनके खानदान में प्रकट होने वाला है वो स्वयं भगवान का अवतार है, और जब भी उन्होंने ये निर्णय किया था कि मुझे घर छोड़कर जंगल या 24 घंटे निरंतर भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए। आप ये प्रश्न पूछ सकते हो कि अगर कदावा मुनि को पता था कि उनका बेटा स्वयं भगवान का अवतार है, जब भगवान खुद प्रकट हो चुके हैं उनके घर में, तो उन्हें फिर घर छोड़ने की क्या आवश्यकता है कि नहीं? कई बार घर वाले कहते हैं हम आपकी भक्ति थोड़ी रोक रहे हैं, घर के छोड़ना चाहते हो। तो यहां आप उदाहरण देख रहे हो कि कदामा मुनि का पता था ब्रह्मा जी के द्वारा कि भगवान स्वयं प्रकट हो रहे हैं उनके खानदान में, और भगवान प्रकट भी हुए जब भी उन्होंने घर त्यागा। आप कह सकते हो घर त्याग दे क्या जरूरत, भगवान की सेवा करो तो आपके घर में है। पर तो इस विषय में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कदामा मुनि ने वैदिक शास्त्रों की शिक्षा का पालन किया, जो यह है कि 50 साल की आयु में खास करके व्यक्ति को गृहस्थ कार्यों से मुक्त होना चाहिए, वानप्रस्थ में प्रवेश करना चाहिए, और अंत में हो सके तो संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहिए। तो ये नहीं कि आप जीवन की समाप्ति तक जुड़े रहो गृहस्थ आश्रम में कह लो। तो इसलिए हालांकि कदामा मुनि को स्पष्ट पता था कि मेरा ये जो बेटा जन्म ले रहा है भगवान है, जब भी उनका यही विचार था कि बेटे को प्रकट होते ही और पति की जिम्मेदारी छोड़कर वो जंगल में जाएंगे भगवान का चिंतन करने के लिए। तो भगवान कपिल देव प्रकट हो चुके हैं, और एक बीबीटी द्वारा एक ग्रंथ छपा था, टीचिंग द लॉर्ड कपिला द सन ऑफ देवहूति, और प्रभुपाद जी ने बॉम्बे में 2 हफ्ते के लिए लगभग लेक्चर दिया था कपिल देव की शिक्षा के पर आधारित। और प्रभुपाद जी ने प्रकाशित करते समय ये लिखा द सन ऑफ देवहूति, क्योंकि प्रभुपाद जी ये स्थापित करना चाहते थे ये जो कपिला देव की शिक्षा है ये शिक्षा ढोंगी कपिला देव से अलग है, और कपिला देव भगवान ने क्या शिक्षा दी है हमें, संख योग के सिद्धांत की, जो कि आप अगले अध्याय से सुनना आरंभ करोगे। तो संक्षेप में संख योग का मूल निचोड़ यह है भक्ति योग। ये नहीं, संख योग का भी मूल संदेश है कि हमें भौतिक आकर्षण को त्याग कर भक्ति योग में जुड़ना चाहिए परम भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो कदामा मुनि हमें उदाहरण दे रहे हैं किस प्रकार अगर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहे तो किस प्रकार उसे गृहस्थ आश्रम में भी रहना चाहिए, और समय के साथ घर छोड़कर भगवान के सेवा में तन मन धन 24 घंटे जुड़ जाना चाहिए। तो कपिल देव भगवान स्वयं भगवान है। परितः साधु नाम विनेश्वर से दुष्कृताम धर्म संसद पनाथाय समवामी युग युगे। और भगवान यदा यदा ही धर्म से किनारे भवति भारत। भगवान क्यों प्रकट होते हैं? धर्म के नियमों की स्थापना के लिए। और यहां उन्होंने संख्य योग का सिद्धांत दिया है इस अवतार में। तो कपिल देव ने शिक्षा दी और ये शिक्षा का भी हम संक्षेप में वर्णन करेंगे। तो आज के श्लोक में हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि गदाम मुनि घर छोड़कर जा रहे हैं और आज के श्लोक के साथ वो निकल रहे हैं घर से। उन्हें जब पता था कि उनका बेटा स्वयं भगवान का अवतार है तो उन्होंने अपने बेटे का परिक्रम किया, क्योंकि आप बंदर का परिक्रम करते हो, अपने बेटे का परिक्रम किया और शांत मन के साथ उस जंगल की ओर चल पड़े। तो आप यहां पूछ सकते हो, हमें भी जंगल में जाना चाहिए? हाँ, हम देखते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगल में प्रवेश करते थे, और आज तो अगर आप जंगल में जाना भी चाहो तो बहुत ही दूर जाना पड़ेगा, सारे जंगल समाप्त हो रहे हैं ना। एक समय वृंदावन में बनी था हर जगह, आज बन की वजह आप क्या देखते हो वृंदावन में? बड़े बड़े बिल्डिंग्स। अगर आप गोवर्धन में जाओ तो वहां आपको गोल्फ कोर्स भी मिलेगा। तो आज हमारे भौतिकवादियों ने बिल्कुल धामों का भी वातावरण बिल्कुल बदल दिया है। तो पर आप शास्त्र में पढ़ते हो जंगल में जाने का, जैसे कि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में सातवें स्कंध के एक श्लोक का वर्णन किया है, जिस श्लोक का उच्चारण भागवतम के पांचवें सातवें अध्याय स्कंध के पांचवें अध्याय में प्रहलाद महाराज करते हैं। प्रहलाद महाराज जी वो श्लोक में कह रहे हैं कि आपको गृहस्थ आश्रम में अंत तक नहीं रहना चाहिए। प्रहलाद महाराज उदाहरण देते हैं कि अगर आप एक कुएं में छलांग मारो जिसमें पानी नहीं है तो आपका सर क्या टूट जाएगा। तो कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में अंत में रहने के बजाय जंगल की ओर जाओ। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है जंगल की ओर जाकर क्या करो, दूसरे शब्दों में भगवान की भक्ति में जुड़ो। तो प्रभुपाद जी आज के श्लोक के तात्पर्य में समझा रहे हैं कि जब ये कहा जाता है शास्त्र में जंगल में जाने के लिए, जंगल में प्रवेश करने के लिए, इसका अर्थ क्या है? इसका ये अर्थ नहीं क्या अभी खोजो वृंदावन के पास कौन से जंगल है, हमने वहां प्रवेश करना। इसका ये अर्थ है कि आप तन मन धन से भगवान की सेवा में जुड़ो। ये नहीं कि आप जिंदगी के अंत तक केवल यही विचार रखो धन कहाँ है, धन कहाँ है, भौतिक सुविधाएं कहाँ है। आप जंगल में जाने का अर्थ और बड़े स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं ये है कि आप तन मन धन से भगवान की सेवा में जुड़ो। और भगवान की सेवा में एक रूप से अब हर वातावरण में जुड़ सकते हो, शहरों में भी जुड़ सकते हो। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि आजकल लोगों को आदत है शहरों में रहने के लिए, तो असली जंगल में कहाँ जाकर रह सकेंगे। पर जहां भी आप रह रहे हो वहां बिल्कुल आध्यात्मिक शिक्षा के आधार पर चलो। और यहां आप देख रहे हो कि कदामा मुनि भी शास्त्रों की शिक्षा का पालन कर रहे हैं, भगवान उनके खानदान में प्रकट हो चुके हैं। जब भी वो ये कह रहे हैं नहीं अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बिल्कुल घर छोड़कर घर के वातावरण में छोड़कर आगे बढ़ना है। तो जंगल में जाने का असली अर्थ है भगवान की सेवा में जुड़े रहना और भौतिक कार्यों से जुदा होना। देवी से गुण माए मामा माया दुरा तया गीता के इस प्रसिद्ध श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि इस माया का विरोध करना बहुत कठिन है। तो आप कहोगे कि अगर परम भगवान स्वयं कह रहे हैं कठिन है तो हमारे लिए क्या संभव, प्रयास करना ही बेकार है कि नहीं? भगवान खुली तो कहने बहुत कठिन है, पर आगे भगवान ये भी कहते हैं मामा ये प्रबंधन माया में ताम चरंधी ने, पर अगर कोई मेरी शरण में आएगा वो इसका विरोध कर सकता है। उदाहरण के लिए श्री उपदेशमृत के सातवें श्लोक में रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के नाम, भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण अत्यंत मीठे हैं। वो कहते हैं शुगर कैंडी, जैसे आप चीनी खाते हो मीठी है, तो भगवान के नाम भी अत्यंत मीठे हैं। पर आगे वो ये भी समझाते हैं क्योंकि हमारे जीव में अविद्या की बीमारी है। अविद्या की बीमारी का अर्थ है काम क्रोध लोभ मोद मद मत्सर्य का प्रभाव, क्योंकि इनका प्रभाव है अविद्या का, इसलिए हम भगवान के नामों को का मीठापन महसूस नहीं कर पाते। सच बात है। तो आप कहोगे रूप गोस्वामी स्वयं कह रहे हैं अविद्या की बीमारी है, तो हमारे लिए क्या संभव हो सकता है, कोई चांस है? तो रूप गोस्वामी आगे ये कहते हैं, पर अगर आप ध्यान पूर्वक जाप करोगे रोज, तो फिर ये अविद्या की जो बीमारी है वो क्या हो गया, दूर हो जाएगी और आपको भगवान के नामों का मीठापन फिर से महसूस होगा। तो दूसरे शब्दों में हमारे संतों ने और शास्त्रों में भगवान ने समस्या का ज्ञान दिया है और उस समस्या को हल कैसे करना वो शिक्षा भी दी है। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि शास्त्र में लगभग हर प्रश्न का उत्तर है। जैसे भागवत में ये भी कहा गया है नस्त प्रेषु अभद्रेशु नित्यम भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक भक्ति भावती नहीं सके। अगर ध्यान से भागवतम सुनोगे रोज तो जो भौतिक आकर्षण है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की शिक्षा का लाभ उठाना चाहिए। तो आज के तात्पर्य में प्रभा जी ये समझा रहे हैं बड़े स्पष्ट रूप से कि हमें परम भगवान के शरणगत होना चाहिए और पूरे रूप से भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए। तो आप ये पूछना चाहोगे भगवान की शरण हम कैसे ले, तो ये शिक्षा कपिलादेव भगवान ने दी है। देवहूति को पता था पर ब्रह्मा जी के द्वारा कि उनका पुत्र स्वयं भगवान है। भगवान के प्रसिद्ध अवतारों का वर्णन शास्त्र में है। हम किसकी कल्पना के आधार पर यह स्वीकार नहीं करते कि ये भगवान है। आज के वातावरण में कई बार लोग दावा करते हैं हम भगवान के अवतार हैं, हम कहते हैं शास्त्रों पर के आधार पर ही हम भगवान की पहचान कर सकते हैं। तो देवहूति ने अपने पुत्र से प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि मैं अज्ञान हूं, मुझे ये बताओ किस प्रकार मुझे जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। उन्होंने कहा यू आर माई ट्रांसेंडेंटल आई, तुम हो मेरे आध्यात्मिक नेत्र, और जिस प्रकार जिस प्रकार खिलाड़ी से आप पेड़ को काटते हो, उन्होंने कहा कि तुम्हारी शिक्षा से मेरी अज्ञानता दूर हो सकती है। अभी से हमें यह भूलना नहीं चाहिए, ये देवहूति की विनम्रता है। आप कहोगे देवहूति इतनी अज्ञान स्त्री है, नहीं, ये उनकी निम्रता है। भगवान के भक्तों का यह भाव रहता है कि हमारे कोई गुण नहीं। कृष्णदास काविराज जी कहते हैं कि मेरे में इतने अवगुण हैं कि अगर कोई मेरा नाम नहीं लेगा तो क्या होगा, उसके सारे गुण मिट जाएंगे। देवव्रतदास ठाकुर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे भजन जो कि भक्त अक्सर गाते हैं, उसमें कहते हैं सब पतितों में मैं सबसे ज्यादा पतित हूं, इसलिए मुझे आपकी कृपा सबसे पहले प्राप्त होनी चाहिए। पर हमारा क्या भाव रहता है, हम सबसे एडवांस हैं, बाकी सब अज्ञानता में है, केवल हमारे में श्रद्धा है ना। हमारे मन में तो यही भाव रहता है, पर हमारे मन में यह भाव रहना चाहिए कि हम सबसे पतित हैं और सब में गुण है, केवल हमारे में सारे अवगुण हैं। तो देवहूति ने कहा मैं अज्ञानता में हूं, तुम मेरे आध्यात्मिक मित्र हो, मेरी अज्ञानता को दूर करो। देवहूति ने उनके पति द्वारा भी शिक्षा प्राप्त की थी और प्रभुपाद जी ने समझाया जब पति के पास आध्यात्मिक ज्ञान हो पूरा, वो पति को शिक्षा दे, फिर पति भी गुरु बन जाता है। तो ये नहीं कि अगर पति खुद अज्ञानता में है और कहे मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं कहना माना कि राम भगवानी के पास पूरी शिक्षा थी और उन्होंने पूरी शिक्षा अपनी पत्नी देवहूति को दी। तो देवहूति ने कहा मैं अज्ञानता में हूं, तुम मुझे शिक्षा दो। और कपिलदेव भगवान बड़े खुश हुए जब माता ने यह प्रश्न पूछा, जैसे परीक्षित महाराज ने संत को निमंत्रण देकर पूछा था जिस व्यक्ति का अंत आने वाला है उसे क्या करना चाहिए। तो देवहूति के प्रश्न के उत्तर में कपिलदेव भगवान ने हमें शिक्षा दी है और देवहूति के माध्यम से ये शिक्षा दी जा रही है पूरे मानव समाज को। और कपिलदेव भगवान ने शिक्षा देते हुए कहा कि हमें साधुओं के प्रति आकर्षण बढ़ाना चाहिए और अगर हम वही आकर्षण जो हम भौतिकवादियों के लिए रखते हैं वही आकर्षण अगर हम साधुओं के प्रति दें तो हमारी अज्ञानता दूर हो जाएगी। दूसरे शब्दों में भौतिक वातावरण में, भौतिक समाज में हमारा एक दूसरे से बड़ा गहरा संबंध रहता है, पति पत्नी बच्चे माँ बाप भाई बहन, और इतना गहरा आकर्षण रहता है कि हमारी इच्छा रहती है कि रिश्ता कभी नहीं टूटे, है कि नहीं, ये संबंध कभी नहीं टूटे। अमेरिका में एक धर्म है जिसको मॉर्मन्स बुलाया जाता है, ये कोई 200 साल पुराना धर्म है, क्रिश्चियन है पर क्रिश्चियनिटी से ऑफशूट है। तो मॉर्मन्स का सिद्धांत यह है कि अगर तुम पत्नी पत्नी दीक्षा लोगे और उनके जो भगवान है जीसस क्राइस्ट उनके माध्यम से उनकी शरण लोगे तो स्वर्ग में भी तुम एक साथ रहोगे और तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ रहेंगे। तो लोगों में ये बड़ा अच्छा लगता है लोगों को क्योंकि उनका इतना गहरा आकर्षण है कि हाँ इन हेवन ऑल्सो विल बी टुगेदर। तो इस प्रकार वो काफी लोगों को आकर्षित करते हैं। पर मैं प्रचार का बड़ा उत्साह है, मॉर्मन्स के जितने बच्चे हैं जो कॉलेजेस में भी पढ़ते हैं अमेरिका में, उस कॉलेज में जब पढ़ते हैं 1 से 4 साल पढ़ाई के बीच में छुट्टी लेते हैं अलग अलग स्थानों में जाकर प्रचार करने के लिए। तो 200 साल में उनका प्रचार सारे विश्व में फैल गया है, पर उनके सिद्धांत में बड़ी गहरी कमजोरी है, वो है कि जीवन त्यागने के बाद पति पत्नी बच्चे सब एक साथ होंगे स्वर्ग में। तो कपिलदेव भगवान कह रहे हैं कि जो आकर्षण हमारा भौतिकवादियों के प्रति है वही आकर्षण अगर आप किसी संत के साथ रखोगे तो अज्ञानता क्या है दूर हो जाएगी। तो संत के प्रति आकर्षण रखने का अर्थ क्या है, अगर आप संत के प्रति आकर्षित हो तो उसका असली अर्थ है वाणी का प्रभाव, वाणी का पालन। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे आप गुरु से संत से दो प्रकार से संबंध जोड़ सकते हो, वापू और वाणी। वापू से ज्यादा प्रभावशाली और महत्वपूर्ण है वाणी। अगर हम संत के वाणी का पालन करेंगे, वापू का पालन भी अच्छा है जब हो सके तो उसका लाभ उठा सकते हो, पर वाणी का पालन सबसे आवश्यक है। और यही शिक्षा कपिला देव दे रहे हैं। कपिला देव ने कहा कि आप साधुओं की संगत बढ़ाओ, साधु संगत साधु संगत सर्वशास्त्र काया, लाभ मात्र साधु संगत सारा सिद्धि आया। साधु की संगत, जैसे पापा जी विदेश में गए, कृष्णा भक्ति की स्थापना की और संग देकर सारे विश्व में लोगों को भक्त बनाया। प्रभा जी रशिया गए थे 1971 में, चार पांच दिनों के लिए, बस पांच दिनों में उन्होंने एक भक्त बनाया। और वो एक भक्त भी कैसे बना, प्रभा जी के सेक्रेटरी थे एक अमेरिकन श्याम सुंदर, तो जा रहे थे दूध और फल लाने के लिए। और उन दिनों में रशियन लोगों को अंग्रेजी नहीं सिखाया जाता था, सरकार नहीं चाहती थी अंग्रेजी सुने सीखें, क्योंकि उनको डर था कि वो रेडियो में सुनेंगे बीबीसी वॉइस ऑफ अमेरिका का ब्रॉडकास्ट कि कम्युनिज्म खराब है, तो बहुत कम रशियन अंग्रेजी जानते थे। खैर एक लड़का मिला रास्ते में, उन्होंने पूछा कईयों से यहाँ कोई दूध और फल की दुकान है, तो एक रशियन मिल गया उन्हें रास्ते में, तो उसने कहा यस आई स्पीक इंग्लिश, तो वो ले गया प्रभुपाद श्याम सुंदर को दुकान तक। तो श्याम सुंदर को पता लगा ये लड़का योगा भी करता है, तो श्याम सुंदर ने कहा मैं ना मेरे गुरु के साथ हूँ जो योगा का टीचर है, तो उसने कहा मैं मिल सकता हूँ आपके गुरु को। तो प्रभुपाद जी को मिले और पांच दिन में ही प्रभुपाद जी ने उन्हें पूरी शिक्षा दे दी और दीक्षा भी दे दी। और फिर प्रभुपाद जी गए, प्रभुपाद जी का भाव था बीज बोना, और फिर प्रभुपाद जी के जाने के बाद उसने प्रचार शुरू किया और ऐसे ऐसे प्रचार बढ़ते गया और आज हजारों भक्त हैं। तो साधु संगत के द्वारा हमारा आध्यात्मिक जीवन सुधरता है। भारत में भी सारे विश्व में भक्ति वृक्ष नामहत सत्संग के द्वारा अनेक लोग भक्ति में जुड़ते हैं, और जो कि साधुओं की संगत का लाभ उठाते हैं वो भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। तो भगवान कपिला देव ने कहा साधुओं के परि आकर्षण बढ़ाओ, और आगे उन्होंने कहा साधु के क्या लक्षण होने चाहिए। ये नहीं कि हम साधु साधु शब्द कहें और किसी को भी साधु के रूप में स्वीकार करें, नहीं, साधु के लक्षण भी होने चाहिए। जैसे अगर हम कहें डॉक्टर के पास जाओ, तो इसका अर्थ है डॉक्टर जिसने शिक्षा प्राप्त की है मेडिकल कॉलेज में, जिसके पास डिग्री भी है। तो कपिला देव भगवान ने साधुओं के लक्षणों का वर्णन किया। उन्होंने क्या कहा, तितिक्षा करुणी कहा सूदा सर्व धैनम अजत सत्व संता साधु साधु भूषण। ये भागवतम का प्रसिद्ध बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, वो लगभग मेरे ख्याल से हर भक्त प्रयास करता है इस श्लोक को कंठस्थ करने के लिए। आप में से कितने भक्तों ने इस श्लोक को कंठस्थ किया हुआ है? अच्छा, इतने ज्यादा नहीं। तो ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें कपिला देव भगवान समझा रहे हैं साधु के क्या लक्षण होने चाहिए। तो आप अगर गृहस्थ आश्रम में आप सोचोगे ये तो साधु मतलब ब्रह्मचर्य सन्यासी है, हमारे लिए नहीं है, नहीं, ये सबके लिए है। जो भी आध्यात्मिक मार्ग में सफलता चाहता है, जो भी भगवान के शरणागत होना चाहता है, अब भगवान के शरणागत हर आश्रम में हो सकते हो। और साधुओं के लक्षणों के विषय में क्या है, तितिक्षा करुणी कहा। तितिक्षा का अर्थ है अत्यंत सहनशील होना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें कहा त्रिनादपि सुनी चेना तरोपि सही अमानी न मना देना कृतिना दिशा हरे। कि साधु को अध्यात्म, अगर आप सदा चाहते हो कि हरि के नामों का उच्चारण करो तो हमें क्या अत्यंत सहनशील होना चाहिए। खरे ने कहा दया की भावना होनी चाहिए, और वैष्णव के विषय में कहा गया है परा दुखा दुखी, जब वो देखता है कि दूसरे व्यक्ति बहुत ही कार्य में जुड़े हैं, ये नहीं जब दुखी का अर्थ है कोई भीख मांग रहा है, अंधा है, बहरा है, बीमारी नहीं, भक्त की दृष्टि से जो व्यक्ति शास्त्र के विपरीत कार्य में जुड़ा हुआ है वो व्यक्ति कौन है, दुर्भाग्यशाली है, अंधा है, तो वो प्रयास करता है उसको ज्ञान पहुंचाने के लिए। तो कवि ने कहा का अर्थ है दया की भावना, और क्योंकि वैष्णव में दया की भावना होती है, अगर भावना नहीं भी है, कई बार भक्त कहते हैं पर हमारे में तो कोई दया की भावना है ही नहीं, हमारा हृदय तो पत्थर जैसा है, तो अगर भावना नहीं भी है, आप अगर गुरु साधु शास्त्र की शिक्षा में विश्वास रखो और उस कार्य का पालन करो जो कहा जाता है शिक्षा, उनकी शिक्षा द्वारा, तो ये दया की भावना अनुकूल हो जाएगी। तो साधु में क्योंकि दया की भावना है, ये नहीं भी है तो वो ये तो पहचानते हैं कि होनी चाहिए, और होनी चाहिए का मतलब है प्रयास करोगे तो होगी, है ना। आप दामोदर अष्टकम में रोज दामोदर अष्टकम का उच्चारण करते हो, देखते हो कि यशोदा माता प्रयास कर रही थी पुत्र को बांधने के लिए, पर हमेशा ये इतनी रस्सियों को जोड़ा, जब ये सारी रस्सियां जोड़कर भी कितनी उम्मीद कम बनने में, तो उसका क्या अर्थ। आप प्रयास करोगे तो फिर भगवान की कृपा से उन्हें समझ सकते हो, पर प्रयास करोगे ही नहीं तो भगवान की कृपा थोड़ी प्राप्त होगी। गॉड हेल्प्स दोज़ हेल्प देमसेल्फ, भगवान उनका सहयोग देते हैं जो स्वयं प्रयास करते हैं। तो दया की भावना होनी चाहिए, और नहीं भी है तो ऐसे कार्य करो जिसके द्वारा भगवान देखेंगे कि आप दया की भावना अनुकूल करने का प्रयास कर रहे हो, और अनेक प्रकार से आप इस भावना को प्रकट कर सकते हो, जिनमें सबसे प्रसिद्ध मार्ग कौन सा है, ग्रंथों का वितरण। जब आप जाते हो ग्रंथों का वितरण करते हो, घर घर जाते हो, बेइज्जती सहते हो, अपमान सहते हो, जब भी आप कहते हो नहीं प्रभुपाद जी ने कहा, गुरु ने कहा ग्रंथों का वितरण करो, प्रभुपाद जी ने कहा जब तक ग्रंथों का वितरण होगा मैं हमेशा जीवित रहूंगा, और प्रयास करो, तो इस प्रयास से आप में भी दया की भावना अनुकूल हो जाएगी। तो तिथि चक्रु ने कहा सुविधा सर्वधहीना, जो साधु है वो सबका मित्र है, किसी को शत्रु के रूप में स्वीकार नहीं करता। बहुत एक समाज में हम कहते हैं ये मित्र है, ये शत्रु है, ये हमारा साथी है, ये दुश्मन है ना। पर बहुत आध्यात्मिक जीवन में कोई आपका शत्रु नहीं, जो आपको कष्ट है वो भी आपका मित्र है। प्रहलाद महाराज को कितना कष्ट भुगतना पड़ा अपने पिता के कारण, है कि नहीं। पिता ने हर रूप से प्रयास किया था बेटे का वध करने के लिए, पर प्रहलाद महाराज ने क्या प्रार्थना की जब पिता का वध हुआ, हे भगवान हालांकि मेरे पिता असुर भाव के थे, उनका आप उद्धार कर दो। तो भक्त जो है कभी भी किसी को शत्रु नहीं स्वीकार करता। जब उनके पिता उनको राजनीतिक शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, राजनीतिक शिक्षा मतलब मित्र कौन है शत्रु कौन है, बेटे ने कहा भगवान मेरे तो सभी मित्र हैं, पिता सभी मेरे मित्र हैं, सुधा सर्वधहीनम। तो जो भक्त है वो हर एक को अपना मित्र मानता है, अजदा शत्रु व संता, और सबके प्रति उसका अच्छा स्वभाव रहता है, ये नहीं ये शत्रु है ये मित्र है। तो कपिलदेव भगवान ने संक्षेप में ये भी समझाया क्या, पहले तो उन्होंने कहा साधुओं के प्रति आकर्षण बढ़ाओ, और साधु के प्रति आकर्षण होने का अर्थ है साधु की वाणी का पालन करना, ध्यान से सुनना। जैसे कई बार भक्तों ने पूछा प्रभुपाद जी से, आप इतने उत्साह से प्रचार कैसे करते हो? प्रभुपाद जी ने कहा आई हर्ड अटेंटिवली। भक्ति सिद्धांत जी जब उपदेश देते थे, कई सन्यासी भी किसी न किसी बहाना उठ के चले जाते थे, पर प्रभुपाद जी हमेशा ध्यान से सुनते रहते थे। प्रभुपाद जी ने कहा कई बार मुझे समझ भी नहीं आता था क्या कह रहे हैं, जब भी वो ध्यान से सुनते जाते थे, और इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा नाउ आई एम प्रीचिंग एंथुसियास्टिकली, क्योंकि मैंने ध्यान से श्रवणम किया है, इसलिए मैं ध्यान से क्या कर रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं। तो हमें साधुओं की संगत में रहकर उनकी वाणी, उनके संदेश को सुनना चाहिए। जैसे जब हम तीर्थ के स्थान में जाते हैं, तो तीर्थ के स्थान में इस भावना से नहीं जाना चाहिए यहां हमारे सारे पापों को छोड़ देंगे, पाप धुल जाएंगे, फिर हम लौट कर फिर नया पाप करेंगे। तीर्थ के स्थान में जाना चाहिए इस भावना के साथ, हम साधु का संदेश सुनेंगे और फिर उस संदेश के आधार पर जीवन को बिताने का प्रयास करेंगे। इस भावना से चलोगे तो फिर साधु की संगत का अस्ति लाभ। तो संख्या योग जिसका उपदेश कपिल देव भगवान ने दिया, तो संख्या योग सिद्धांत का निचोड़ यह है भक्ति योग, और भक्ति योग का अर्थ है मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करना, किस लिए? भगवान की सेवा में। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि संघ योग का कोई और निर्णय है। संघ योग प्रभुपाद जी बड़े स्पष्ट रूप से हर जहां भी संघ योग का शब्द का उपयोग किया जाता है, प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं द कंक्लूजन ऑफ संघ योग, संघ योग का निर्णय क्या है कि हमें शरणागत होना है भगवान के, या भक्ति योग एक माध्यम है जिसके द्वारा परम भगवान को आकर्षित कर सकते हो। भागवत गीता में भगवान ये भी कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयोजते, अगर एक पत्ता भी तो मुझे अर्पण करोगे मैं उसे स्वीकार करूंगा तुलसी का फल, पर एक शर्त है, क्या? प्रेम और भक्ति के साथ। और प्रेम और भक्ति प्राप्त होगी अगर हम श्रवणम कीर्तनम का लाभ उठाएंगे। ये जो हमें शिक्षा दी जाती है इस्कॉन में, वैदिक भक्ति का पालन, नियमों का पालन, जैसे मंगल आदि क्लास, गुरु पूजा, जप करना, शास्त्र का ध्यान करना, ये सब महत्वपूर्ण कार्य है भौतिक प्रभाव को नष्ट करने के लिए। जैसे आप दवाई लेते हो बीमारी को दूर करने के लिए, इसी प्रकार ये एक औषधि है जिसके द्वारा आप भौतिक आकर्षण से मुक्त हो सकते हो। और इस श्लोक के तात्पर्य में एक और महत्वपूर्ण विषय की चर्चा की गई है, वो यह है कि भौतिक संसार में चिंता ही चिंता है। और प्रभुपाद जी जो प्रहलाद महाराज के श्लोकों का वर्णन कर रहे हैं, उस श्लोक में प्रहलाद महाराज भी यही कह रहे हैं कि भौतिक संसार में चिंता ही चिंता है। तो चाहे आप धनी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे आप किसी देश के राष्ट्रपति क्यों ना हो, चिंता से रहित कोई हो सकता है? नहीं। इसीलिए गोविंददास कविराज जी ने बड़े सुंदर शब्दों में क्या कहा है, बाजा हुए मना श्री नंद नंदना अभय चरण रविंद्र है, हे मेरा मन तुम चिंता से भरे हुए हो, और अगर तुम चिंता से रहित होना चाहते हो तो क्या है उपाय? बाजा हुए माना श्री नंदन भगवान के शरणगत हो जाओ। तो आप कहोगे भगवान के शरणगत हम हो जाए तो हर प्रकार की चिंता समाप्त हो जाएगी, हाँ या ना? नहीं, भौतिक चिंता केवल, फिर आपकी आध्यात्मिक चिंता बढ़ेगी। आध्यात्मिक चिंता का क्या अर्थ है? ये चिंता करना कि हम माया के प्रभाव में नहीं आ जाए, ये चिंता करना कि हमने जाप जरूर अच्छी तरह करना है, ये चिंता करना कि हम पर जलपक के साथ नहीं जुड़ जाए, ये चिंता करना कि आप दूसरों का उद्धार कैसे कर सकते हो। जैसे प्रहलाद महाराज, उन्होंने कहा बड़े स्पष्ट रूप से, मुझे अपने उद्धार की चिंता नहीं, ना ही मैं पहाड़ों में जाना चाहता हूं या जंगल में जाना चाहता हूं। तो क्या चिंता है आपको? मुझे ये चिंता है कि किस प्रकार जो व्यक्ति दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, उनका उद्धार कैसे होगा। तो चिंता रहती है पर अलग भाव की चिंता। जैसे आप मोबाइल फोन बंद करोगे, जैसे कि जब चैतन्य महाप्रभु एक समय हरिदास ठाकुर के पास गए, चैतन्य हरिदास ठाकुर क्योंकि उनका जन्म हुआ था मुसलमान खानदान में, तो उन्होंने जगन्नाथपुरी मंदिर में प्रवेश नहीं किया, पर महाप्रभु खुद रोज उनकी भजन कुटीर में जाते थे। तो एक दिन वो गए हरिदास ठाकुर के कुटिया में, तो उन्होंने कहा, हरिदास ये कहो किस प्रकार इन लक्ष्यों का पतियों का उद्धार होगा। तो हरिदास ने कहा, प्रभु चिंता न करे, हे मेरे मालिक चिंता मत करो। हाँ राम बालिक कहे नाम, भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे ध्यान पूर्वक अपराधन से रहित, तो फिर उनका उद्धार हो जाएगा। तो भक्त के मन, भगवान के मन में भी चिंता है कैसे पतितों का उद्धार किया जाए, और भक्तों के मन में भी चिंता रहती है कैसे सबका उद्धार किया जाए। इसलिए भक्त जो वैष्णव भक्त हैं खास करके, वो प्रचार के कार्य में जुड़ते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी प्रकार से अगर हमें धन प्राप्त हो जाए, कोई ऊंची स्थिति प्राप्त हो जाए, ऊंचा पद प्राप्त हो जाए, तो हम चिंता से रहित हो जाएंगे। चिंता से अगर रहित होना है तो केवल एक ही उपाय है, भगवान के चरण कमलों की शरण। और भगवान के चरण कमलों की शरण आप स्वीकार कर सकते हो यह महामंत्र के उच्चारण के द्वारा। अगर आप ध्यान से महामंत्र का उच्चारण नियमित रूप से रोज करोगे, तो इसके द्वारा भगवान के शरणगत हो जाओगे, इसके द्वारा आप अनेक प्रकार के आकर्षण से मुक्त हो जाओगे, और इस प्रकार आप भक्ति में आगे बढ़कर भगवान के धाम लौट सकोगे। तो देवहूति ने जो प्रश्न पूछा कपिल देव से, वो प्रश्न हम सबको पूछना चाहिए। और देवहूति ने स्पष्ट कहा, मैं अज्ञानता में हूं, आप मुझे शिक्षा दीजिए। फिर उन्होंने शिक्षा देना आरंभ किया, जो आप 25वें अध्याय से आगे के अध्यायों में सुनते जाओगे। और भगवान कपिल देव की शिक्षा का निचोड़ यह है कि हमें भक्ति योग में जुड़ना चाहिए, और भक्ति योग में जुड़ने का साधन क्या है? श्रवणम कीर्तनम। जब प्रहलाद महाराज से उनके पिता ने पूछा, ये बताओ क्या सीखा तुमने पाठशाला में, तो बेटे ने क्या कहा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम, नवदा भक्ति का उपदेश दिया। तो संक्षेप में आज के श्लोक में हम देख रहे हैं कि कदामा मुनि ने अपने बेटे को कहा कि अब मैं जा रहा हूं घर छोड़कर, और उन्हें पता था कि उनके बेटा स्वयं भगवान है, तो उन्होंने अपने बेटे की परिक्रमा की। वे बड़े शांत मन के साथ वो घर से निकले, कहां? जंगल में जाकर बिल्कुल तन मन से भगवान की सेवा में जुड़ने के लिए। तो हम सबका यही भाव होना चाहिए, मन द्वारा भगवान का चिंतन करें, देह द्वारा भगवान की सेवा करें, और धन है तो धन का उपयोग करें किस लिए? भगवान की सेवा में। और भगवद गीता में भगवान समझाते हैं शरीर की क्या तपस्या, जीव की क्या तपस्या, मन की क्या तपस्या, कहते शरीर का उपयोग करो भगवान की सेवा में, इंद्रियों का उपयोग करो भगवान की सेवा में, ब्राह्मणों की सेवा में, और शुद्धता पवित्रता का पालन करो। जीव द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण करो, जीव द्वारा वैदिक शास्त्रों का उच्चारण करो, जीव द्वारा मीठे शब्दों में बोलो, ये नहीं कि आप जीव के द्वारा क्रोधित होकर लोगों का अपमान करो। मन द्वारा भगवान का चिंतन करो, भगवान के उपदेश का चिंतन करो, उनके स्वरूप का चिंतन करो। तो इस प्रकार आप जिस आश्रम में भी हो उस आश्रम में रहते हुए जीवन को सफल बना सकोगे। और अगर हम ध्यान से जाप करें, ध्यान से सुने भगवान की वाणी को, साथ में शास्त्रों का अध्ययन करें, प्रभुपाद जी की हार्दिक इच्छा थी कि केवल हम इन ग्रंथों का वितरण नहीं करें पर इन ग्रंथों का अध्ययन भी करें, और प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अनुवाद 80 से अधिक भाषा में हो चुका है। तो इन ग्रंथों का अगर हम पढ़ें भी तो हमारी बुद्धि तेज होगी, और तेज बुद्धि के साथ माया रूपी भावों को दूर रख सकोगे। हरे कृष्ण। ओके, डू वी हैव टाइम फॉर क्वेश्चन? नो, नहीं, प्रसादम टाइम। एक प्रश्न है तो लोग प्रसाद के लिए राह देख रहे हैं। ओके, सबको भूख लगी हुई है, बोले सब हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम। कोई क्वेश्चन है तो सब भाग मैराथन में भाग लोगे? हाँ, आप सब पूरे हिंदुस्तान विश्व के अलग अलग स्थानों से हो, प्रभुपाद जी ने हमें अनेक सेवाएं दी हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध सेवा है ग्रंथों का वितरण। तो सब तैयारी करो, हाँ, इस भावना को अनुकूल करो, और ये सोचो कि हमें कैसे प्रभुपाद जी के ग्रंथों को बांटना है। क्यों? क्योंकि इनमें शिक्षा है जिसके द्वारा लोग असली सुख प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा।